शान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लिया और जबड़े भींचते हुए बेहद गुस्से में बोला, उससे मेरी क्या दुश्मनी है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी फिक्र छोड़कर तुम अपनी फिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी से निया के चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। अब उससे मेरा बदला पूरा हुआ ही समझो, और अगला नंबर तुम्हारा ही है, बस इंतजार करो अपनी बर्बादी की खबर सुनने का। इतना कहकर वो मुड़कर कैबिन से जाने लगा, पर गेट पर जाकर उसके कदम रुक गए। अगले ही पल उसकी सख्त आवाज ने अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मेरे बारे में सोचने से बेहतर होगा कि अपने बारे में सोचो। उस बंद फाइल में तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा और अहम राज कैद है। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, जो बचा सकते हो उसे बचा लो, वरना अगर देर की तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। इतना कहकर शान ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए और तेजी से वहां से निकल गया। उसने अर्जुन को बातों बातों में हिंट दे दिया था कि अगर उसने देर की तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा, पर अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि शान के कहने का मतलब आखिर था क्या। वो यहाँ ये सब बातें करने तो नहीं आया होगा। अर्जुन शान से हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी फाइल पर पड़ी और उसको शान की कही बात याद आई कि उस फाइल में उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा और अहम राज कैद है। अर्जुन ने तुरंत उस फाइल को उठाकर उसे खोला तो पहले पन्ने पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता जा रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान खींचकर बाहर निकाल ली हो। आंखों में खौफ छलकने लगा था और चेहरे पर दर्द अपने पांव पसार चुका था। किसी को खो देने का डर आंखों में आंसू बनकर छलक आया था। उस फाइल को पढ़कर वो जैसे अपने होश गंवा चुका था। वो निढाल सा चेयर पर बैठ गया, पर अगले ही पल शान के कहे आखिरी के शब्द उसके कानों में गूंज उठे कि अभी भी वक्त है उसके पास, लेकिन अगर उसने देर कर दी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। उसने तुरंत ही अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन करते हुए लगभग दौड़ते हुए अपने कैबिन से बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ दौड़ गया। उसको यूं भागते देख आसपास मौजूद एम्प्लॉयज़ हैरानी से पहले उसे फिर एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। अर्जुन भागते हुए पार्किंग में पहुंचा और अपनी कार स्टार्ट करके तेजी से ऑफिस से बाहर चला गया। उसके ऑफिस के बाहर सड़क की दूसरी तरफ अपनी कार में मौजूद शान, जिसकी निगाहें इसी तरफ टिकी हुई थीं, जब उसने अर्जुन की कार को बाहर निकलते देखा तो उसके परेशान से चेहरे पर सुकून झलकने लगा। उसने गाड़ी की सीट से अपना सर लगाते हुए अपनी आंखों में बंद कर लिया और खुद से ही बोला, इस बार किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी और निया को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ निगाहें घुमाई तो अभी 4 बज रहे थे, पर शान का ऑफिस जाने का मूड नहीं था। उसने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। उसकी गाड़ी गेट से होते हुए पोर्च में आकर रुकी और गाड़ी से बाहर निकलते हुए शान ने चाबी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी और खुद तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर आरवी किचन से बाहर ही आ रही थी, जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ते शान पर उसकी नज़र पड़ी। उसका चेहरा देखकर ही वो समझ गई कि वो परेशान है, इसीलिए वो वापस किचन में चली गई। अंशु इस वक्त अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ पीछे के लॉन में खेल रही थी और आरवी सबके लिए चाय बनाने अंदर आई थी। उसने चाय बनाकर छाया को सबके पास जाने को कहा और खुद शान की कॉफ़ी बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने रूम में कदम रखा और अपनी निगाहें घुमाई तो सोफे पर आकर उसकी तलाश खत्म हुई, जहां शान आंखें बंद किए सोफे से सर टिकाए बैठा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं और चेहरे पर अजीब सा दर्द और कसक नजर आ रही थी। नॉर्मली वो जब घर आता था तो सबसे पहले फ्रेश होता था, पर आज उसने ना तो अपना कोट खोला ना ही टाई ढीली की, यहाँ तक कि अपने जूते तक नहीं उतारे, बस सामने लगे टेबल पर अपने पाँव पसारे सोफे से सर टिकाए आंख बंद किए बैठा था। आरवी समझ रही थी कि कोई बात उसको परेशान कर रही है, शायद वो तकलीफ में है, कुछ है जो उसको दर्द दे रहा है, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। शायद अभी उसको कुछ देर अकेले और शांत रहने की ज़रूरत थी। यही सोचकर वो धीमे कदमों से शान के पास चली आई। आरवी ने बहुत ही आराम से कॉफ़ी का कप टेबल पर साइड में रखा ताकि ज़रा भी आवाज़ ना हो और शान डिस्टर्ब ना हो, फिर बिना आहट के वापस जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर वो एकदम से रुक गई। पलटकर कुछ पल वो खामोशी से शान को देखने के बाद कुछ सोचकर वापस धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। उसने शान के पैर से जूते उतारने के लिए जैसे ही उसके पैर को छुआ, शान ने एकाएक अपनी आंखें खोल दी और अपने पैर को पीछे करते हुए हड़बड़ाहट में बोला, आरवी ये तुम कब। शान इतना कह ही सका था कि आरवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, श, आप एकदम शांत रहिए और जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दीजिए, ट्रस्ट मी आपको अच्छा लगेगा। आरवी ने फिर से उसके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर शान ने अपना पैर नीचे करते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। ज़रूरत तो आपको भी नहीं थी मेरे पैर पर लगे जख्म पर मरहम लगाने की, पर आपने वो किया ना, तब मैंने तो आपको नहीं रोका था। और रोका भी था तो आप रोके तो नहीं थे। आपने वही किया जो आप करना चाहते थे और अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर अभी आपने मुझे रोका तो मैं भी आपको अपने लिए दोबारा कुछ नहीं करने दूंगी। उसने धमकी भी दी तो इतने प्यार से कि ना चाहते हुए भी शान के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। आरवी ने उसको प्यारी सी धमकी दी, फिर उसके पैरों को वापस टेबल पर रखकर उसके जूते और जुराब उतारकर साइड में रख दिए और उठकर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। शान तब से बड़े प्यार से आरवी को देख रहा था, पर जब आरवी पीछे चली गई तो वो थोड़ा चौंक गया। उसने जैसे ही सर घुमाकर आरवी को देखने की कोशिश की, आरवी ने उसके सर को पकड़कर वापस उसका चेहरा सामने की तरफ कर दिया और सख्त लहजे में बोली, शांति से बैठे रहिए, खबरदार जो जरा भी हिले। आज आरवी उसके साथ वही कर रही थी जो कुछ दिन पहले उसने आरवी के साथ किया था। फिर भी शान को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि आज इतना खराब मूड होने के बाद भी आरवी की प्यारी सी हरकतों की वजह से उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई थी। आरवी उसके पीछे खड़ी थी। उसने हल्के हाथों से धीरे धीरे उसके सर को दबाना शुरू किया। ये उसका तरीका था शान के स्ट्रेस को रिलीज करने का। उसकी नाजुक पतली पतली उंगलियां बड़े ही प्यार से शान के बालों में घूम रही थी, तो कभी उसके माथे को दबा रही थी, और उसका ये नुस्खा काम कर रहा था। धीरे धीरे शान का दिमाग एकदम शांत हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रिलैक्स करने लगा। करीब 15 मिनट गुजर गए। अब शान एकदम शांत हो गया था, पर आरवी अब भी उसके सर की मसाज कर रही थी। शान कुछ देर और उसकी नर्म उंगलियों के स्पर्श को महसूस करता रहा, फिर उसने आरवी का हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, रहने दो। नहीं, मैं करती हूं ना, आपको अच्छा लगेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं सच में। आरवी को लगा कि शान उसको इसीलिए रोक रहा है क्योंकि वो उसको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही।
उसकी बात सुनकर शान के लबों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने उसके हाथ को थामते हुए ही उसको घुमाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और शांत लहजे में बोला, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है? मैंने आपको घर के अंदर आते हुए देखा था, आप बहुत परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। पर जब मैं रूम में आई तो आपको देखकर समझ गई कि आप परेशान के साथ साथ उदास और दुखी भी हैं। बस इसलिए आपको रिलैक्स करने के लिए मैंने आपके सर की मसाज कर दी। अब तो आप ठीक है ना? आरवी के चेहरे पर शान की फ़िक्र साफ छलक रही थी। उसने हामी भरते हुए उसको अपने पास बिठा लिया। फिर जैसे ही कॉफ़ी का कप उठाने लगा, आरवी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उसको रोकते हुए बोली, वो ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बनाकर ला देती हूँ। आरवी ने जैसे ही उसके हाथ से कॉफ़ी कप लेना चाहा, शान ने उसकी बाँह पकड़कर उसको वापस अपने पास बिठा लिया और दूसरे हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप को अपने लबों से लगा लिया। आरवी ने अचंभित निगाहों से उसको देखा, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही शान ने कॉफ़ी पीते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसे ही अच्छी लग रही है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ पल यहीं बैठो मेरे साथ। शान के कहे शब्द सुनकर पहले तो आरवी अचरज भरी निगाहों से उसको देखने लगी, फिर कुछ पल शान को देखते रहने के बाद उसने सहजता से सवाल किया, आप आज जल्दी कैसे आ गए? ये सवाल तब से उसके दिमाग में घूम रहा था जब से उसके कानों में शान की कार की आवाज़ पड़ी थी, पर उसको पूछने का मौका नहीं मिला था। अब मौका मिला तो उससे पूछ ही लिया। शान के भाव उसके सवाल पर कुछ पल को बदले, क्योंकि उसको निया और अर्जुन वाली बात याद आ गई थी। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और कॉफ़ी की सिप लेते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, किसी काम से ऑफिस से बाहर गया था, कुछ देर में वैसे भी ऑफिस आवर्स ओवर होने ही वाले थे, तो सीधे घर ही चला आया। जब आप आए थे तो बहुत परेशान से लग रहे हैं, वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, फिर भी अगर आप अपनी परेशानी मेरे साथ बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, शायद मैं आपके किसी काम ना आ सकूं, पर प्रॉब्लम को शेयर करने से वो कम हो जाती है। आरवी ने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की। एक उम्मीद थी उसे कि शायद अब उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दोनों बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से बांट सकते हैं।